तुरंत राजनिवत भागवतम स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 16 श्लोक संख्या 38 मेरे पीछे दोहराए। इसका अनुवाद पढ़ता हूं श्री भोपाल द्वारा। श्री भोपाल की पीछे दोहराइए। हे भगवान, हे परमेश्वर, इंद्र तृप्ति के भूखे तथा विभिन्न देवताओं की उपासना करने वाले अज्ञानी पुरुष नर वेश में पशुओं के समान हैं। वे पार्श्विक वृत्ति के कारण आपकी उपासना न करके नगण्य देवताओं को जो आपके यश की लघु चिंगारी के समान है पूजते हैं। समस्त ब्रह्मांड के संहार के साथ ये देवता तथा इनसे प्राप्त आशीर्वाद उसी प्रकार विनष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार राजा की सत्ता छिन जाने पर राजकीय अधिकारी। तात्पर्य पढ़ता हूं श्री प्रभुपाद द्वारा, ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक का कथन है। कामेश्च सत् ज्ञाना, जिनके मन भौतिक कामनाओं से विकृत हो चुके हैं वे देवताओं की शरण में जाते हैं। इसी प्रकार श्लोक में भी देवताओं की उपासना को निरर्थक बताया गया है। हम देवताओं का आदर कर सकते हैं किंतु वे पूजनीय नहीं है। जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं उनकी बुद्धि मारी जाती है वृत्त ज्ञाना, क्योंकि वे ये नहीं जानते कि जब इस दृश्य जगत का संहार होगा ये सारे देवता भी जो जगत के विभाग अध्यक्ष हैं नष्ट हो जाएंगे। और जब देवता नष्ट हो जाएंगे उन्होंने अज्ञानी मनुष्यों को जो वर दिए हैं वे भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भक्त को चाहिए कि देवताओं की पूजा करके भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा न करे, वरना ईश्वर की सेवा करे जो इनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाले हैं। भागवतम के 2वें स्कंद के 3रे अध्याय के 10वें श्लोक का वचन है। अकाम सर्व कामों वा मोक्ष काम उदारथी तीव्रे ने भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। चाहे भौतिक कामनाओं से पूर्ण हो या उनसे मुक्त या मुक्ति का इच्छुक हो, बुद्धिमान मनुष्य को सभी प्रकार से परम पुरुष परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। यह सिद्ध मनुष्य का परम कर्तव्य है। इसका रूप मनुष्य का और कर्म पशु जैसे होते हैं, वह नर पशु या द्विपद कहलाता है। जो मनुष्य श्री कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखता उसकी प्रदर्शना नर पशु के रूप में की जानी चाहिए। हे भगवान, हे परमेश्वर, इंद्र तृप्ति के भूखे तथा विभिन्न देवताओं की उपासना करने वाले अज्ञानी पुरुष नर वेश में पशुओं के समान है। पार्श्विक वृत्ति के कारण आपकी उपासना न करके नगण्य देवताओं को जो उनके यश की लघु चिंगारी के समान है पूछते हैं। समस्त ब्रह्मांड के संहार के साथ ये देवता तथा इनसे प्राप्त आशीर्वाद उसी प्रकार विनष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार राजा की सत्ता छिन जाने पर राजकीय अधिकारी। बहुत ही सुंदर श्लोक है, डिफ्रेंशिएट किया गया है कि आपको पूजा किसकी करनी चाहिए। रूपा जी यहां रेफरेंस देते हैं भगवद गीता के अंदर 7वें अध्याय के 20वें श्लोक का। सातवां अध्याय जो है भगवद गीता का भगवत ज्ञान, 14वें श्लोक के अंदर जो है भगवान कह रहे हैं देवी ही ऐसा गुणवई मम माया दुरत्या मामे वे प्रबदंते माया विधाम तरंतिते। प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी स्त्री शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। यह चर्चा हो रही है कि आपको मृत्यु के उपरांत शरीर को त्यागने के बाद जाना कहां है वेड्यू को। तो भगवान ने कहा कि जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, एक बड़ा स्पेसिफिक पॉइंट है जिसी को आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। ये जो भगवान के शरणागत हो गए हैं वो भगवान की तीन गुणों वाली माया को पार कर सकते हैं, इन तीनों गुणों के बंधन में जीव फंसा हुआ। जब हम कहते हैं कि आप बंधन में हैं तो बंधन में कैसे हैं, किसके द्वारा बंधन में, किसने आपको बांधा हुआ है, किसने आपको जो है इस बंधन में अटका रखा। जैसे हम कहते हैं कि इस गाय को जरा वहां बांध दो, चरती रहेगी आराम से, इसको एक खूंटे से बांध दीजिए, तो कह तो दिया बांध दीजिए पर बांधने के लिए रस्सी चाहिए, बिना रस्सी के तो नहीं बन सकता। इसी तरह इस जीव को इस भौतिक संसार में बांधने के लिए भी एक रस्सी चाहिए, और रस्सी है प्रकृति के तीन गुण, तत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। अगर इस बंधन से छूटना है तो इन तीनों गुणों से पार जाना है, और पार जाने का तरीका भगवान ने एक ही बताया कि जो मेरी शरणागत हो जाते हैं, जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो इस बंधन को पार करके मेरे धाम में आ सकते हैं, दूसरा और कोई नहीं। अब इसी बात को क्लैरिफाई करने के बाद अगले श्लोक में कहते हैं, जो निबट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। दुष्ट मेरी शरण जो है ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वो नरों में अधम है। नर में अधम, इसका अर्थ क्या है कि नरों में मतलब मनुष्यों में सबसे निकृष्ट। यही बात जो है प्रभुपाद जी आज के श्लोक में यहां कह रहे हैं कि जिसका रूप मनुष्य और कर्म पशु जैसे होते हैं वह नर पशु है, द्विपद पशु कहलाता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये चार चीजें जो हैं कॉमन है, खाना खाना, नींद लेना, भय डर या अपना बचाओ, और संतान पैदा करना, ये चारों चीजें जो है मनुष्यों में और पशुओं में एक समान है, परंतु अंतर किसका है, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, कि मनुष्य के अंदर जो है धर्म की मात्रा अधिक है। तो धर्म क्या है, इसकी मात्रा अधिक है, पशु में तो धर्म है नहीं। पशु के स्वाभाविक गुण है, मनुष्य के भी स्वाभाविक गुण है। पशु के स्वाभाविक गुण है भोगों को भोगना, मनुष्य का स्वाभाविक गुण है सेवा। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म है साक्षात भगवान का प्रेम प्राप्त करना, और प्रेम की प्राप्ति होती है सेवा के द्वारा। तो धर्म का अर्थ यह है कि सनातन धर्म है, जिसको सनातन धर्म कहते हैं, सनातन धर्म है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो धर्म क्या है, भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त करना, अर्थात भगवान की सेवा में लग जाना, यही मेरा धर्म है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ग्रुप आदि लिखते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ये सब जो है फेथ है, श्रद्धा है, कि आप किस तरीके से, किस श्रद्धा के अनुसार जो है भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर सकते हो। परंतु धर्म केवल एक है, धर्म है लव ऑफ गॉड एंड सर्विस टू गॉड, लव एंड सर्विस टू सुप्रीम ट्रिनिटी ऑफ गॉड। अब यहां चर्चा आ रही है कि चार प्रकार के लोग जो है मेरी शरण में नहीं आते, और इसके बाद कहते हैं कि चार प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च प्रत्यर्षभ। कि चार प्रकार के कौन है, पुण्य आत्मा है, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी। भगवान बड़ा क्लियरली एक एक चीज को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। पहले बताया कि तीनों गुणों की माया से कौन पार हो सकता है, उसका प्रोसेस क्या है। अब एक्सप्लेन करते हैं कि माया को पार नहीं करने वाले जो मेरी शरण में नहीं आते हैं वो कौन है, और अब बताते हैं कि जो मेरी शरण में आते हैं, अर्थात या तो वो आर्थ है, आर्थ मतलब दुखी, जिज्ञासु ज्ञान प्राप्त करने वाले अर्थार्थी जिनको धन चाहिए, या ज्ञानी जो कि पूर्ण रूप से ज्ञान रखते हैं और मेरी शरण में आते हैं। और यही बात जो है यहां कही जा रही है कि भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा न करे, वरना ईश्वर की सेवा करे, और चाहे भौतिक कामनाओं से पूर्ण हो या उनसे मुक्त या मुक्ति का इच्छुक हो, बुद्धिमान मनुष्य को सभी प्रकार से परम पुरुष परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। अब भौतिक इच्छाएं हैं, मतलब इस संसार को भोगने की इच्छाएं। परंतु भगवान यहां कहते हैं फिर कि इनमें से जो परम ज्ञानी है, शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। अर्थात एक भक्ति विशिष्यते, केवल एक की भक्ति करता है, एक की। हमसे कई बार प्रश्न किया जाता है, सारे ही भगवान हैं, सारे ही भगवान हैं, मतलब उन्होंने सभी देवी देवताओं को और भगवान को एक ही कैटेगरी में, एक ही लेवल पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे रख दिया कि सारे ही भगवान हैं, आप जिस किसी की मर्जी पूजा कर सकते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, सारे ही तो उनके रूप हैं। परंतु यहां भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, इनमें से जो परम ज्ञानी है वह मेरी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है। मीन्स मेरी शुद्ध भक्ति में कौन लगता है? जो ज्ञान से परिपूर्ण है, अर्थात जिसने इस भगवत ज्ञान को समझ लिया, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसकी बात समझ में आ रही है कि भगवान कौन है और देवता कौन है, मनुष्य कौन है, जीव कौन है, इन सब में से मुझे किसकी भक्ति में लगना चाहिए। और भक्ति का मतलब होता है प्रेममयी सेवा, और सेवा का अर्थ है प्रेम प्राप्त करना। तो मुझे किसका प्रेम प्राप्त करना चाहिए, किसके प्रेम की प्राप्ति के लिए मुझे कार्य करना चाहिए। तो यहां कहा जा रहा है एक भक्ति विशिष्यते, और क्वालिटी क्या बताई, वो मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं। जिसका भगवान प्रिय हो जाए उसको किसी बात का डर है क्या? प्राइम मिनिस्टर मेरा मित्र है तो मुझे किसी का डर ही नहीं है, राजा मेरा दोस्त है। तो जिसके भगवान मित्र हैं, जिसको भगवान प्रिय हैं, भगवान को जो प्रिय है उसको किसी बात का डर है? तो कोई डर नहीं। पर डर का अर्थ ये नहीं है कि मुझे डर नहीं है तो मैं इंद्रिय भोग में लग जाऊं, इंद्र तृप्ति में लग जाऊं, एंजॉयमेंट में लग जाऊं। डर का मतलब यह है कि मुझे इस शरीर को त्यागने के बाद कहां जाना है, इसका डर नहीं। क्योंकि मैं तो केवल भक्ति उन्हीं की कर रहा हूं, एक भक्ति, एक बात उनकी भक्ति कर रहा हूं, तो मुझे कोई डर नहीं है। मुझे पता है कि जब भी मेरा शरीर छूटेगा मुझे धाम चले जाना, अगर नो फियर। मुझे पाए दाएं डरने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान यह कहते हैं कि निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं जो मेरे ज्ञान को प्राप्त हैं, उसे मैं अपने ही समान मानता हूं। वे मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? भगवान की सेवा। जो भगवान की सेवा करता है, जो भगवान के प्रति अपने आप को समर्पण कर देता है, जो अपना लक्ष्य जो है केवल भगवान को मानता है और लक्ष्य में उसके सामने कोई चीज नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। अब भगवान बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति है कौन। जैसे यहां पर बताया कि जिनके मन भौतिक कामनाओं से विकृत हो चुके हैं, तो यहां 19वें श्लोक में बता रहे हैं, बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। कि ऐसा दुर्लभ महात्मा, ऐसा दुर्लभ महान पुरुष जो मेरे धाम में आने के योग्य है, जिसने ये योग्यता प्राप्त कर ली है कि वो शरीर को त्यागने के बाद मेरे धाम में प्रवेश कर जाएगा, ऐसे योग्य पुरुष की योग्यता क्या है? ऐसे भक्त की, ऐसे डिवोटी की योग्यता क्या है? तो पहले बताते हैं कि योग्यता कब बनती है, जब उसे जन्म जन्मांतर के बाद सचमुच का ज्ञान होता है। या प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर शब्द इस्तेमाल किया है, सचमुच। कई बार हम जो है ना ज्ञान, हां हां मुझे पता है, हां हां मुझे पता है, सुनते हैं, समझते हैं, बात करते हैं, परंतु उसको गहराई में जाके नहीं समझते, उसका तत्व नहीं समझते और उसको सुपरफिशियल ज्ञान, हां ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं। सचमुच का मतलब है यू आर डीपली इंटरेस्टेड एंड इन्वॉल्व इन दैट डेप्थ में। यस व्हाट इट इज, यस और एंड अल्टीमेटली आपने भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जीव का ज्ञान प्राप्त कर लिया, प्रकृति का ज्ञान प्राप्त कर लिया, जब सारे ज्ञान प्राप्त कर लिए तब आपको समझ में आया कि आप कौन हैं और भगवान कौन है। तब कहते हैं साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। जब आप उसको समझ लोगे फिर आपका मन जो है हो जाएगा बिल्कुल फिक्स कि मेरा अल्टीमेट गोल केवल भगवान की सेवा करना है, केवल भगवान का प्रेम प्राप्ति है और कुछ नहीं। मेरे लक्ष्य से मुझे बाएं दाएं कहीं नहीं देखना, एक मिलीमीटर बाएं नहीं, एक मिलीमीटर दाएं नहीं, एकदम स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन क्या है? भगवान की सेवा। और भगवान कौन है इसको मैं समझ चुका हूं। आई हैव क्लियरली अंडरस्टूड कि कृष्ण ही भगवान है, तत्व यही कि कृष्ण ही ब्रह्म है, कृष्ण ही भगवान है। पूरे शास्त्रों का तत्व, पूरे शास्त्रों का निचोड़ ये एक लाइन है। इसको मैंने अच्छे तरीके से समझ लिया है, ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है, अपनी अपीलें दलीलें सब लगा के बाएं दाएं भटक भटक के सब मैंने समझ लिया है कि यस दिस इज द ओनली तत्व, नो अदर तत्व। इसलिए जब वो बात समझ लेता हूं इसका मतलब है सब कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। अब उसने सब चीजें समझ ली, इज अंडरस्टूड एवरीथिंग, बट अब वो जो है समझ गया है कि भगवान की शरण में जाए बगैर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। अब भगवान इतनी बात बताने के बाद अब जो है क्लैरिफाई करते हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। नाउ एक वो बता दिया कि जिन्होंने मेरे को ही सब कारणों का परम कारण मान लिया। एक वो बात बता दी कि जो जो है पुण्यात्मा है मेरी शरण में आते हैं चाहे उन्हें भौतिक सुख सुविधा चाहिए, दुखी हैं तो दुख के हरण के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, अर्थ के लिए, और यानी चारों प्रकार के जो है लोग पुण्यात्मा है मेरी शरण में आते हैं। परंतु यहां फिर जो है खुल के चर्चा हो रही है। भगवान कहते हैं जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, मतलब जो लोग भगवान की शरण नहीं लेते, जो लोग भगवान की तीनों गुणों की जो माया है इसको पार नहीं करना चाहते, अर्थात जिन्होंने अभी तक भगवत ज्ञान को पूर्ण रूप से नहीं समझा, अभी जो है बहुनाम जन्म नामंते वाले प्लेटफॉर्म पे नहीं आए हैं, अभी वो जब देवताओं के प्लेटफॉर्म पे फंसे हुए हैं, अर्थात जो भगवान की शरण नहीं लेते हैं देवताओं की शरण लेते हैं, उनकी चर्चा हो रही है कि वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि ज्ञान की प्राप्ति तो हो रही है, यू आर ट्राइंग टू गेन नॉलेज, परंतु वो ज्ञान जो है आज भी कामनाओं से ढका हुआ है, डिजायर्स ने उस ज्ञान को ओवरपावर किया हुआ है, कवर किया हुआ है। अब वो ज्ञान जो है आपके अंदर कभी कभी हिलोरे मारता, हाँ हाँ नहीं नहीं वो ठीक है, नहीं नहीं वो ठीक है, फिर कामना उसको ओवरपावर कर लेती है। अर्थात आपका जो ज्ञान है आपकी कामनाओं से ढका हुआ, डिजायर्स ने जो है आपके ज्ञान को ओवरपावर कर लिया है, इसीलिए आप जो है दुष्ट है, नराधम है, माया ने आपको हरा हुआ है, आप भगवान की शरण में नहीं जाते। एक तो वो क्वालिटी बताई, अब बताई उससे थोड़ा सा हायर प्लेटफॉर्म है कि ठीक है उतना नहीं है परंतु अभी भी मैं देवताओं की शरण में जा रहा हूं। क्यों? कि मुझे अभी तक भगवत ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी भगवान पे श्रद्धा नहीं बनी, फेथ नहीं हुआ कि यस कृष्ण जो है मेरी सब समस्याओं का हल कर सकते हैं। अभी भी मन के अंदर कृष्ण के प्रति डाउट है, संदेह, शक है कि ये कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उसने बताया था कि वो चीज चाहिए तो उस देवता की पूजा करो, 16 हफ्ते ये करो, 25 हफ्ते ये करो, 40 हफ्ते ये करो, नंगे पैर जाओ, लटकते जाओ, उठकते जाओ, वहां जाके आपकी जो है सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि आपका माइंड अभी भी फ्लिकरिंग है, दूसरे व्यक्ति आपके मन को तुरंत भटका देते हैं, जरा सी बात सुनी और उसके पीछे लग गए। जो आपने ज्ञान प्राप्त किया वो ज्ञान उस डिजायर को फुलफिल करने के उपलक्ष्य में ढक गया, नहीं नहीं वो ठीक। ٹھیک ہے، سورج کی پوجا کرنی چاہیے، گنیش جی کرنی چاہیے، اس کی کرنی چاہیے، اس کی کرنی چاہیے، 16 دیے، مطلب الگ الگ جگہ پہ آج کھٹا نہیں کھانا ہے، میٹھا نہیں کھانا ہے، نمک نہیں کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، آج وہ نہیں کھانا، مطلب دیر آر سو مینی فیسلٹیز اویلیبل. ہم جو ہے ان فیسلٹیز کو انجوائے کرنے کے لیے، ان کو بھوگنے کے لیے، اس کو پراپت کرنے کے لیے اپنا من جو ہے اس کو بھٹکا دیتے ہیں، فکس نہیں ہونے دیتے. اور بھگوان کیا کہتے ہیں، میں پرتیک جیو میں ہردے پرتیک جیو کے ہردے میں پرماتما سوروپ سے استھت ہوں. جیسے ہی کوئی کسی دیوتا کی پوجا کرنے کی اچھا کرتا ہے، میں اس کی شردھا کو استھر کر دیتا ہوں، جس سے وہ اسی وشیش دیوتا کی بھکتی کر سکے. بہت امپورٹنٹ شلوک ہے. بھگوان پرتیک جیو کے ہردے میں استھت ہے. پرماتما کیا کر رہے ہیں، وٹ از ہی ڈوئنگ؟ یہاں ہے تو کچھ تو کرے گا ہی. کیا کر رہے ہیں؟ شردا استھر کر رہے ہیں، پرمیشن دے رہے ہیں، جو کرنا چاہے کر رہے ہیں. وہ درشٹا ہے، ہنومنتا ہے، ساکشی ہیں. مطلب وہ آپ کے ہردے میں بیٹھ کے ہوئے صرف آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کا ساکشی بنے ہوئے ہیں. آپ کی جس دیوتا کے پرتی شردا ہو گئی، اس کے پرتی شردا فکس بھگوان کر رہے ہیں. دیوتا میں کشمتا نہیں ہے، دیوتا میں شکتی نہیں ہے کہ آپ کی شردا اپنے پرتی استھر کر سکے. بھگوان سپشٹ کریں کہ میں اس کی شردا کو استھر کرتا ہوں. جب آپ پوجا تو کسی دیوتا کی کر رہے ہو، سیوا کسی دیوتا کی کر رہے ہو، ودھی ودھان پوروک دیوتا کی پرتی آپ شردھاوان ہو، تو وہ شردھا کو فکس کرنا دیوتا کا کاریہ ہونا چاہیے. پرنتو بھگوان کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کہنا ڈو اٹ. وہ شردھا آپ کے ہردے میں فکس کرتا ہوں. تو یہاں ایک پرشن آتا ہے کہ جب بھگوان اتنے دیالو ہیں، بھگوان چاہتے ہیں کہ ہم مرتیو اپرانت شریر تیاگنے پر ان کے دھام میں آئے ہیں، تو شردھا اپنے پرتی فکس کیوں نہیں کرتے، دیوتا کے پرتی فکس کیوں کرتے؟ بھائی دیوتا کے اپاسنا میں چلے گئے تو بھگوان میں کٹ، میرے پرتی آؤ، میری پوجا کرو، میری آرادھنا کرو، میری سیوا کرو، دیوتا کی مت کرو، اس کے پرتی شردھا فکس میں نہیں کروں گا، اپنے پرتی شردھا فکس کروں گا. ایسا کیوں نہیں کرتے ہو؟ وائی؟ ریزن از اونلی ون، کہ بھگوان جو ہے کسی بھی کاسٹ پہ، کسی بھی قیمت پہ آپ کی سوتنترتا جو ہے اس کا ہنن نہیں کرنا چاہتے، اس کو کنٹرول نہیں کرنا چاہتے. جیو کو جو انہوں نے انڈیپینڈنس آف ول دیا ہے، جو سوتنتر اچھا دی ہے، اس کو کسی بھی قیمت پہ جو ہے وہ ڈالنا نہیں چاہتے، اس کو اگنور نہیں کرنا چاہتے. آپ کی ڈیزائر ہے، اوکے آئی ول ہیلپ یو، از اے ہیلپنگ پرسن. سہرت سر ہوتا نا، آپ کے سہرت ہیں، انہوں نے کہا یو ڈیزائر دس تھنگ، اوکے آئی ول ہیلپ یو. اگر آپ کسی دیوتا کے پرتی اپنی شردا رکھتے ہیں، تو میں آپ کی شردا کو اس دیوتا کے پرتی فکس کر دوں گا، کیونکہ آپ کی ڈیزائر، آپ کی کامنا وہی ہے. اگر آپ کی ڈیزائر میرے پرتی شردھا رکھنے کی ہے، میرے پرتی ہے، تب میں آپ کی ڈیزائر کو اپنے پرتی، شردھا کو اپنے پرتی فکس کر دوں گا. پرنتو اگر کسی دیوتا کے پرتی ہے، کسی بھوت پریت کے پرتی ہے، کسی اور کے پرتی ہے، تو میں اس کو اپنے طرف موڑوں گا نہیں. نہیں نہیں وہاں نہیں جانا، نو جاؤ، اچھا تیری تھی بھوگنا، یو ہیو انڈیپینڈنس آف ول، تم جاؤ آنند کرو، جو مرضی کرو. تو یہاں کہہ رہے ہیں جیسے اس وشیش دیوتا کی بھکتی کر سکے. اب بھگوان کہتے ہیں کہ دیوتا کی بھکتی تو کری، کس لیے کری؟ اٹ واز دا پرپز آف دیٹ. اس لیے کری کہ مجھے اس بھوتک سنسار کے اندر کچھ سکھ چاہیے، میری کچھ ڈیزائرز ہیں، میری کچھ کامنائیں ہیں، میری کچھ اچھائیں ہیں، میں ان کو فلفل کرنا چاہتا ہوں. اب بھگوان کہتے ہیں کہ فلفلمنٹ جو ہے وہ دیوتا کر سکتا ہے، پرنتو उसको जो फुलफिलमेंट करने की परमिशन है, कितनी अलॉटमेंट है वो मेरे द्वारा। ओके, तो बात यहां लिखते हैं तो सारे देवता भी जगत के विभाग दक्ष हैं नष्ट हो जाएंगे। अर्थात क्या है कि जो विभाग दक्ष, विभाग दक्ष का मतलब है डिपार्टमेंटल हेड्स, उनके पास एक लिमिट है। देश के अंदर आज किसी को फांसी की सजा हो जाती है तो फांसी की सजा की माफी सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता। मर्सी प्लीर, दया याचिका जो है राष्ट्रपति के पास जाएगी, वह इज ऑल एंड ऑल। हरेक डिपार्टमेंट, हाई कोर्ट का अपना लिमिट है, सुप्रीम कोर्ट का अपना लिमिट है, संसद का अपना लिमिट है, सभी डिपार्टमेंट्स के अपने अपने लिमिट हैं कि मेरी लिमिट से बाहर है तो क्लर्क जो है वहां नोट बना के हायर ऑफिसर में भेज देता, फिर नोट बनाता उसे हायर ऑफिसर में भेज देता, नोट बनाता अल्टीमेटली मिनिस्टर पे आ जाता, मिनिस्टर देखता है 10 नोट लगे हुए इसके अंदर ये चीज, उसके बाद फैसला करता है संसद में भेज देता। इसी तरह जो है अगर कोई भी कार्य हम किसी देवता के प्रति करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसके प्रति सेवा करते हैं, उसके विधि विधान पूर्वक सब नियमों का पालन करते हैं, पर भगवान सब नियमों से ऊपर। आप देवता की भक्ति करने के लिए आपके पास 100 नियम है, देश कहां है, काल कैसा है, स्थान कैसा है, द्रव्य कैसा है, मंत्र पूजा करने वाला कैसा है, आपके पास बहुत सारे लिमिटेशन है। कहीं भी मिस्टेक होगी तो बात नहीं बनेगी, आपका मंत्र जाप फेल हो गया जी, इसमें जो है शब्दों का उच्चारण ठीक नहीं हुआ था, उच्चारण करने वाला ठीक नहीं था, जो आपने जो है हवन के अंदर सामग्री डाली है वो आपके अधर्म के पैसे से आई थी, तो सब बड़ी लिमिटेशन। परंतु भगवान इन सब नियमों से ऊपर है, उनके लिए जैसा कोई नियम नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ नहीं है। नियम ज्यादा है, क्या और नियम ज्यादा है, तो ज्यादा किस लिए है कि आपकी कामनाएं ज्यादा, डिजायर्स ज्यादा, तो आप उनको फुलफिल करने के लिए ऐसे व्यक्ति के पास जाते हो जो आपके डिजायर्स को दे सके, आपके डिजायर्स को फुलफिल कर सके, अर्थात आप देवताओं के पास जाते हो। और देवताओं का रोल क्या है, बच्चे ने पिता से मांगा पॉइजन के लिए पैसा, तो पिता ने झापड़ रख दिया, परंतु उसने थोड़ा पैसा लेके दुकानदार के पास गया तो दुकानदार ने पैसा लेके पॉइजन दे दिया। तो देवता आपको भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए सुख और सामान देते हैं, आप भोगते रहते हो और योनि के बाद योनि, योनि के बाद योनि प्राप्त करते रहते हो। भगवान कहते हैं सॉरी, मेरे पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, मैं तुम्हें ये चीज नहीं दे सकता। आई विल गिव यू दी बेस्ट, और बेस्ट क्या है, वो वस्तु जो तुम्हें मेरे पास वापस है, मैं वही चीज दे सकता हूं जो तुमको मेरे पास वापस लाने में सक्षम है, हेल्प करेगी। जो चीज भौतिक संसार में भोगने के लिए है वो मैं तुमको देने के लिए तैयार नहीं हूं, हां सब्जेक्ट टू कि तुम्हारी सेवा कितनी है, तुम्हारी भक्ति कितनी है। अगर तुम केवल उसी के लिए आए हो, ओके आई विल ग्रांट दैट ऑल्सो। वो आपके लेवल ऑफ भक्ति पे डिपेंड करता है, लेवल ऑफ सेवा पे डिपेंड करता है, लेवल ऑफ डिजायर पे डिपेंड करता है, ये तो वो श्लोक फेल हो जाएगा, चार पुण्य आत्मा मेरी सेवा में आते, मेरी शरण में आते। तो यहां पर जो है चर्चा हो रही है कि भगवान ने देवताओं को एक सैंक्शन दिया हुआ है, उस सैंक्शन से ज्यादा वो नहीं दे सकते, सैंक्शन वहीं से आ रही है। अल्टीमेट सैंक्शन जो है कोई भी संसद जो है पास करती है तो प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, उसके बिना सैंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होता। इसी तरह सारी की सारी सैंक्शन जो है भगवान से आ रही है। भगवान कहते हैं वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं, सारे लाभ केवल मैं ही दे रहा हूं, सारे कार्य मैं न खुद करके आपको, मैंने जो उच्च कोटि के जीव हैं, जो देवता की योनि प्राप्त किए हुए हैं, उनमें से मैंने कुछ को जो है जिम्मेदारियां सौंप रखी हैं, वो जिम्मेदारियां वो निभाते हैं, मैं प्रेम से बांसुरी बजाता हूं, मैं कुछ नहीं करता। पद्म पुराण में भगवान स्पष्ट कहते हैं मैं गोपियों राधा जी के प्रेम में निमग्न रहता हूं, मेरे सारे कार्य मेरे विस्तारों द्वारा किए जाते हैं, आई डोंट डू एनीथिंग, मेरा काम एक ही है प्रेम करना और बांसुरी बजाना, दैट्स ऑल। अब यहां पे जो है लास्ट में बात आती है, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले तो देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। हम देवताओं का आदर कर सकते हैं, किंतु वे पूजनीय नहीं है। जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं उनकी बुद्धि मारी जाती है, क्योंकि वे ये नहीं जानते जब इस जगत का संहार होगा तो सारे देवता भी जगत के विभाग दक्ष हैं नष्ट हो जाएंगे। भगवान अविनाशी हैं, जीव भी अविनाशी है, परंतु जो हमें योनि प्राप्त हुई है वो विनाशी है। आज हम मनुष्य योनि में हैं तो कल किसी और योनि में जा सकते हैं। जीव समाप्त नहीं होता, परंतु जो हमें शरीर मिला है ये समाप्त हो जाए। तो शरीर के नाते जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो शरीर समाप्त होने पे जिम्मेदारियां भी समाप्त हो जाए। आज मैं इस मकान का मालिक हूं, मेरे दो बेटे हैं, उनको पालना है, बड़ा करना है, आगे बढ़ाना है, शरीर नष्ट हो गया, मृत्यु आ गई, तो पालना पढ़ाना ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, मेरे लिए कुछ नहीं है उसमें। तो इसी तरीके से जो भगवान कह रहे हैं कि देवता भी तो विनाशील हैं, जो विनाशील चीज है जिसको शरीर को त्याग के जाना है वो आपको अविनाशी फल कैसे दे सकता है। जो नश्वर है उससे फल भी नश्वर ही प्राप्त, इसलिए जो फल मिलता है वो कैसा है, सीमित और क्षणभंगुर। दृश्य जगत का संहार होते ही आपके फल भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप भी समाप्त हो रहे हो, देवता भी समाप्त हो रहे हैं, फल भी समाप्त हो रहे हैं। जो आपको बेनिफिट मिल रहा था, जो आपको फायदा मिल रहा था किसी देवता की भक्ति करने से, वो भी समाप्त हो जाएंगे, परंतु आपके जो कर्मों के फल हैं वो समाप्त कि उन्हीं कर्मों के फलों को भोगने के लिए आपको फिर से शरीर धारण करना। यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब देवता नष्ट हो जाएंगे तो उन्होंने अज्ञानी मनुष्यों को जो वर दिए हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। और यही बात जो है उभर के आ रही है, जब हम जो है नवा अध्याय बढ़ते हैं तो नवे अध्याय के अंदर भी भगवान स्पष्ट बता रहे हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो सातवें अध्याय में, नवें अध्याय में भगवान ने देवताओं की पूजा करने का और अपनी पूजा करने का स्पष्ट अंतर बताया। भगवान कहते हैं कि जो एक क्षण भी मेरे बिना नहीं रह सकता, ऐसा भक्त जो अपने जीवन के अंदर मेरा विस्मरण एक क्षण के लिए भी नहीं करता, और किस भाव से पूजा करता है, जब मेरा विस्मरण नहीं करता है तो क्या वो देवताओं की पूजा करेगा, तो क्या लेवल है उसका। अनन्य चिंतो यंतो मां वे जना परिपासते तेषां नित्य पिता नाम योगक्षेम महामेह। भगवान ने क्लियर कट संदेश दे दिया कि उसका योग और क्षेम मैं वहन करता हूं, आई टेक केयर। मैं किसी देवता से नहीं कहता कि जाओ उसका ध्यान रख, मैं किसी व्यक्ति से नहीं कहता जाओ उसका ध्यान रखो, क्योंकि वो मेरे प्रति समर्पित है, क्योंकि वो मेरा ध्यान, मेरी पूजा, मेरी सेवा, मेरा चिंतन हर क्षण कर रहा है, हर पल कर रहा है, उसके मन से एक क्षण के लिए भी मेरा स्मरण नहीं हुआ। मन मना, उसने अपना मन मुझे दे दिया है, उसके मन में मेरे सिवाय और कोई नहीं है, उसकी भक्ति अव्याभिचारिणी है, उसकी भक्ति में व्याभिचार नहीं है, उसकी व्यक्ति भक्ति जो है व्यवसायत्मक है, उसकी भक्ति में व्यवसाय बिजनेस नहीं है, उसको भौतिक सुख और संसार की कोई कामना नहीं है, वो केवल मेरे प्रति समर्पित है। तो ऐसे भक्त के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, व्हाट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपका कोई एम्प्लॉय आपके प्रति समर्पित है, वो आपके बिना एक क्षण भी बाय-बाय नहीं सोचता, ना कहीं जाता है, आपकी सेवा से बिल्कुल नहीं उछड़ता, एकदम आपकी सेवा के प्रति समर्पित है, तब आप सोचते हो इतना अच्छा एम्प्लॉय है, मैं इसके लिए क्या करूं, अठराई टूफर है, कितना बढ़िया व्यक्ति है, कितना मेरी सेवा करता है, कितना मेरे प्रति समर्पित है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। आपके मन में ऑटोमेटिकली ये भाव आ रहा है कि मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति 100% मेरे प्रति समर्पित है, जिसने अपने मन को मुझे दे दिया है, जिसके मन के अंदर मैं एक क्षण के लिए भी विस्मृत नहीं होता, जिसने अपनी सेवा को केवल मेरे प्रति समर्पित किया है और किसी के प्रति नहीं किया, अनन्य चिंतो, किसी अन्य का चिंतन, अन्य में आपका शरीर भी आता है, अन्य के अंदर ये भौतिक संसार आता है, अन्य के अंदर रिश्तेदार, नातेदार, बंधुगण, पड़ोसी पड़ोसी, देश काल, समाज, सब कुछ आ रहा है। आप उनमें से किसी के प्रति भी चिंतन नहीं करते, केवल भगवान के प्रति चिंतन करते हो। तो भगवान कहते हैं कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी श्लोक के अंदर क्लियर कर दी, योग क्षेम वहां भी है कि मैं उसके योग और क्षेम का वहन करता हूं, कराता नहीं, मैं खुद उसका योग और क्षेम देखता हूं, मैं उसका जो है, जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं, और जो उसके पास नहीं है उसको दिलाता हूं, उसको देता हूं, पर कंडीशन अप्लाई। एक स्टार लगा दिया भगवान, एक छोटा सा स्टार लगा दिया, क्या देता हूं, जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, जो मेरी सेवा करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है वही दूंगा, भौतिक सुख भोगने की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करूंगा। और किसकी रक्षा करूंगा, उसी की रक्षा करूंगा जो उसको मेरी भक्ति में सहायक वस्तुएं हैं और उसके पास हैं, उसकी मैं रक्षा करूंगा, और जो उसको मेरी भक्ति में सहायक नहीं है उसको मैं उठा लूंगा, चला जाएगा। तो भगवान ने कहा है अनन्य चिंतो यंतो, कि जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, मतलब जिसके चिंतन में मेरे सिवाय और कोई नहीं है, जिसकी भक्ति अव्याभिचार है, जिसकी भक्ति में व्याभिचार नहीं, एक भक्ति विशिष्ट थे, जिसकी भक्ति में केवल मैं हूं और कोई है ही नहीं, तो वहां पर डेविएशन। आपने कहा अच्छा अच्छा 16 सोमवार, सॉरी प्रभु, दिस नॉट माई केक, मेरा केक नहीं है, मैं नहीं कर सकता है काम, मैं आदर दूंगा, मान दूंगा, सम्मान दूंगा, ऑनर दूंगा, प्रणाम करूंगा, सब कुछ करूंगा, परंतु भक्ति केवल जो है कृष्ण की करूंगा और किसी की नहीं करूंगा, बिकॉज दैट इज माय एम। मैंने वही लक्ष्य समझा है कि मेरी भक्ति में केवल कृष्ण है और कोई नहीं है। यही गुरुवार जी लिख रहे हैं कि हम उनको जो है आदर, मान, दान, सम्मान सब कर सकते हैं, परंतु हम देवताओं का आदर कर सकते हैं किंतु वे पूजनीय नहीं। ऑनर देना, प्रणाम करना, सम्मान करना एक अलग बात है। कई बार हम कहते हैं हम देवता के पास जाएंगे ना, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भगवान हमको आप हमको जो है भगवान की भक्ति में लगाइए, यस यू कैन मेक अ रिक्वेस्ट, परंतु जो आपकी श्रद्धा अपने प्रति स्थिर नहीं कर सकते, वो आपकी श्रद्धा भगवान के प्रति कैसे स्थिर करेंगे। दिस क्वेश्चन कम्स, इसका मतलब है हम लोग जो है वहां भी शायद गलत दरवाजा खटखटा रहे हैं। भगवान स्पष्ट कहा श्रद्धा मैं स्थिर करता हूं। जब देवता अपने प्रति श्रद्धा फिक्स नहीं कर सकता है, तो आपकी श्रद्धा भगवान के प्रति कैसे फिक्स कर देगा। तो भगवान के प्रति श्रद्धा अगर अपनी फिक्स करनी है तो भगवान के पास ही जाना पड़ेगा और कहीं नहीं। इसीलिए जो है जगह जगह शब्द आया है अव्याभिचारिणी, अविशायित में कहा, मतलब आपकी भक्ति के अंदर जो है क्लियर कट होना चाहिए कि मेरे को अपने मन को भगवान को दे देना है, उसके सिवा मेरा मन पाए दाएं कहीं भटकना नहीं चाहिए। जिस दिन मैंने अपने मन को भगवान के प्रति फिक्स करना शुरू कर दिया, भगवान के प्रति समर्पित करना शुरू कर दिया, भगवान के सिवाय और किसी के बारे में सोचना बंद कर दिया, तो मेरी श्रद्धा भगवान ऑटोमेटिकली अपने में फिक्स करते चले जाएंगे। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू पीपल हु आर कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो लोग कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, अदर कॉन्शियस भी है, इनके मन के अंदर औरों के प्रति भी भाव है, उनकी श्रद्धा भगवान के प्रति स्थिर नहीं हो पाती। कि भगवान ने आपकी श्रद्धा अपने प्रति तभी स्थिर करनी है जब आपका पूर्ण रूप से उनके प्रति समर्पण हो जाएगा। अगर समर्पण अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, कम है, कहीं बाएं दाएं भी भटक रहा है, तो आपकी श्रद्धा भगवान में फिक्स नहीं हो सकती। इसीलिए जो है ये बात समझनी है, जो बाबा जी हम श्लोक कोट कर रहे हैं, चाहे भौतिक कामनाओं से पूर्ण हो या उनसे मुक्त या मुक्ति का इच्छुक बुद्धिमान मनुष्य को सभी प्रकार से परम पुरुष परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। जैसी आप उनकी पूजा में जाते हो वैसी वैसी मन शुद्ध होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे मन शुद्ध होना शुरू हो जाता है आपके मन से विकार हटने शुरू हो जाते हैं, और विकारों में एक विकार यह है कि भगवान को भगवान न समझना, उनके बराबर बहुत लोगों को भगवान समझना, यह भी एक विकार है। तो वो विकार ऑटोमेटिकली वॉश होता चला जाता है, तब आप इस लेवल पे आ जाते हो या आप कृष्ण की भक्ति करते हो। हाँ जी, मैं कृष्ण की भी भक्ति करता हूं, इस बात को छोड़ के बात ये आ जाती है कि हाँ मैं कृष्ण की ही भक्ति करता हूं। दिस यू अंडरस्टैंड, यही भगवत ज्ञान है, यही निचोड़ है, इसी को समझना। हरे कृष्ण। भगवान ने तीसरे अध्याय के 26वें श्लोक में कहा यह बात, जो बात तुम कह रहे हो कि उसमें प्रभुपाद जी का जो ट्रांसलेशन है ना, उसको तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा है। मतलब जो उनका शब्द, जो उनका मीनिंग है, जो उन्होंने जो है यहां पे ट्रांसलेशन दिया है उसका, आई जस्ट रीड इट फॉर यू एंड यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ठीक है, जिससे उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कार्य करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। एंड द लास्ट पार्ट इन ब्रैकेट में प्रभुपाद जी ने बड़ी सुंदर लिखी है, जिससे कृष्ण धाम नामव्रत का क्रमिक विकास हो। इट्स नॉट दैट यू डोंट हैव टू प्रीच। एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं, आप एक पंडाल प्रोग्राम में गए, ठीक है, प्रभुपाद जी का कथा है, भगवद गीता से पढ़ा जा रहा है, सब ज्ञान यहां से दिया जा रहा है, हमारे टेंपल के अध्यक्ष जो है वहां लेक्चर दे रहे हैं। अब आपको यह पता है कि मेरे पास एक नाम अपराध के अंदर है, अश्रद्धालु को कृष्ण नाम का उपदेश देना। क्या आपने बाहर इंटरव्यू पैनल बिठाया कि अंदर आने वाले सिर्फ भक्त होने चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए? क्यों? श्रद्धालु है उसमें से 90% श्रद्धालु है, 95% श्रद्धालु पंडाल कर रहे हो, और ओपन 1,500-2,000 जितने लोग आ रहे। जब प्रभु जी ने आपको इंस्ट्रक्शन दी कि सिर्फ श्रद्धालु आना चाहिए, हां एक एग्जाम्पल समझे, आप सवेरे उठे, कुछ बाजरे के दाने लिए और कबूतरों को डालने चले गए, आपके मन में एम क्या है? कबूतरों को दाना डालना है। 10-12 कौए भी आ गए, वो दाना चुप गए, तो आप क्या पहले फिल्टर करोगे सिर्फ कबूतर ही अंदर आएगा बाजरा खाने के लिए और कोई नहीं आएगा? नो, बेसिकली अश्रद्धालु है, देवताओं के प्रति श्रद्धा रखता है, देवताओं छोड़ो होते थे किसी मजार के प्रति श्रद्धा रखता है, मजार। आई नो एग्जाम्पल्स, मेरे को अच्छे तरीके से मालूम है, जहां मैं रहता हूं मेरे बिल्कुल घर से 100 मीटर पे दीनदयाल हॉस्पिटल है, उसकी जो फ्रंट रोड है उसके पार झील है, क्रेमेशन ग्राउंड है, तो वहां एक चौहड़ हुआ करता था, वो चौहड़ को तो सरकार ने झील में कन्वर्ट कर दिया, और उसी के पास एक किसी पीर की ना छोटी सी इतनी सी वो पत्थर सा लगा के ना मजार बनी हुई थी। हम छोटे होते थे, हम लोग बस स्मॉल अबाउट 6 years 7 years 8 years, तो खेलते मिलते वहां पे चला जाते थे, अपना पूरा एरिया मैदान था, क्रिकेट खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो सारे एरिया में लोग, वो बाजार में कोई पूछता नहीं था उसको, मतलब इट वॉज इग्नोर्ड, एंड वो छोटी सी बाजार ऐसी पड़ी हुई थी। आज उस मजार के ऊपर एक पक्का स्ट्रक्चर बन गया मार्बल का, और बाहर दुकानें बन गई हैं, और शुक्रवार को या बृहस्पतिवार को जो भी उनका दिन होता है, दबादब चादरें चढ़ रही, और लोग उसके प्रति श्रद्धावान हैं, उनका भगवान के प्रति फेथ नहीं है, वो मंदिर में नहीं आएंगे। उनसे किसी से बोलो भी आज जो है प्रोग्राम में चलो नहीं, आज तो मुझे चादर चढ़ाने जाना, उनके लिए चादर इंपॉर्टेंट हो गई है, वो तो किसी पीर के प्रति श्रद्धावान है, वो तो किसी देवता, तो छोड़ो तो देवता नहीं है ना, वो तो कोई मनुष्य था। आज पता नहीं कौन सी योनि में है, नोबडी नोज, ठाकुर जी के धाम में चला गया है, देवलोक चला गया है, कहां गया, कहां नहीं गया, नोबडी नोज अबाउट इट, बट लोग उसके प्रति श्रद्धावान है, वहां ट्रैफिक जैम्स हो जाते हैं, पूरा हाल हो जाता है उसका, जो दिन होता है ज्यादातर थर्सडे या फ्राइडे जो भी दिन है, तो वहां ट्रैफिक जैम्स हो जाए, पुलिस लगती है वहां। श्रद्धा हमारी जो है किसी के प्रति है, परंतु अगर वो हमारे कॉन्टेक्ट में आते हैं तो हम उन्हें प्रीच करते हैं कि हो सकता है हमारे प्रचार से वो कृष्ण भावनामृत की तरफ मुड़ जाए, आ जाएगा। तो जो डेमी गॉड्स के वर्शिप करते हैं हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना, वो है टू टेल देम अबाउट दिस कि व्हाट आर द रियल फैक्ट्स। पहले उनके मन के अंदर शास्त्र के प्रति, भगवदगीता के प्रति श्रद्धा जगानी है। ऐसे तो बोर्ड शक्ति है, पता नहीं किसने लिखी थी, छोटो जी क्या विकार किताब, ऐसे लोग कहते दिस वॉट पीपल से, क्या प्रूफ है कि भगवान ने कहा, आपने देखा क्या, दिस इज वॉट पीपल से, ऐसा लोग कहते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अगर आप जैसे सेवन सेशन कोर्स करते हो तो डस गॉड एग्जिस्ट, भगवान के प्रति श्रद्धा जगाते हो सबसे पहले, सुख की खोज होती है, उसके बाद क्या है भगवान के प्रति श्रद्धा, फिर आता है भगवान एक है या अनेक है, अब एक एक करके क्लैरिफाई करते हो, जितने भी सेशन होते हैं प्रभु जी सेशन करते हैं, पूछिए ना एक एक करके, फिर आप सोल में जाते हो, वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, कर्मा थ्योरी है उस पर जाते हो, पर योगा थ्योरी है उस पर जाते हो, उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, तो वन बाय वन, बिकॉज आप जो सेवन सेशंस में लोगों को बुलाते हो या प्रचार करते हो, सारे तो श्रद्धालु नहीं होते ना, बट सेवन सेशन करने के बाद उन्हें श्रद्धा जागृत हो जाती है, नाउ दे से यस, हमें अगला बताइए क्या करना है, अब भक्ति वृक्ष में आ जाइए, दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो उस ग्रेजुअल प्रोसेस के अंदर अगर डेमी गॉड वर्शिपर है तो मैंने उससे मुंह फिर लिया, पर्दा खींच लिया, भाई तेरा घर उधर है और मेरा घर इधर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रीचिंग के टाइम पे वी डोंट हैव टू कंसिडर वट हु इज वट, हां जब हमने फिक्स देख लिया, जैसे मेरे पास मेल पे मैसेज आता, एक व्यक्ति है वो इस्लाम को फॉलो करता है, मतलब बड़ा उसका फेथ है, बहुत सब कुछ है, और कॉलेज में साथ पढ़ता है तो हिंदू भी मुसलमान भी, उसको नहीं छोड़ना चाहता, वो जाकर नायक के चक्कर में है, मुझे बहुत सुना है उसे, जाकर नायक ने कल भी आया था कि उसको, वो कहते हैं इसको बंद कराओ जेल के अंदर, सिद्धिविनायक मंदिर के सामने तो सेशन था बहुत बड़ा। बट अब उसको जो क्वेश्चन करते हैं तो मेरे पास मैसेज आते, मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, भाई ऐसा है ये कट्टर है, इसको प्रीच करने की कोशिश मत करो, सुनेगा नहीं तुम्हारी बात। अब प्रीच कर रहे हो, अनजान आदमी आते हैं उसके अंदर, आपकी बात सुनकर चले जाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। अब ऐसा व्यक्ति है जो आपकी बात को थोड़ा थोड़ा समझता है, आपको सुनने को तैयार है, हो सकता है पलट जाए। एक व्यक्ति न तो आपको सुनने को तैयार है न पलटने को तैयार है, बहुत ही कट्टर है, तो उसके लिए आप माथा पच्ची कर रहे हो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, इग्नोर है, लेट इम गो द वे ही लाइक्स, उसको डिस्टर्ब नहीं करो, उसको डिस्टर्ब नहीं करो। वो एक ऐसे लोग हैं जिनको आप डिस्टर्ब नहीं करो, आप लाख माथा पटक लो, आप माथा पटक लो। आप मुझे बताइएगा कि हमारे यहां टेंपल के अंदर इतना प्रचार होता है, इतना प्रचार होता है, इतनी साइंटिफिक प्रचार होता है, इतना सिस्टमैटिक प्रचार होता है, मतलब ऐसे नहीं कि हवाबाजी की जा रही है, बड़ा सिस्टमैटिक प्रचार होता है, एकदम शास्त्र से उद्धरण दे देके, शास्त्र का ज्ञान दे देके, और बड़ा सिस्टमैटिकली प्रचार करते हैं। आप में से कितने लोगों ने निरंकारी मिशन वालों को विश्वभक्ति में जोड़ा, दे नॉट रेडी टू लिसन टू यू, कट्टर है। इक्का दुक्का राधा स्वामी आ गया होगा, इक्का दुक्का, नॉट ग्रुप्स, ऐसा नहीं 50 लोग इकट्ठे आ गए, 100 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़ के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर दी, ऐसा नहीं कि 100 लोग वहां से निकले और आपने कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए, ऐसा नहीं, इक्का दुक्का। मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, एक दो चार पांच मिल जाएंगे, बट द ग्रुप्स, द वे दे प्रीच, द वे दे, उन्होंने जो उनके जो लोग हैं, उन्होंने जो अपने प्रति श्रद्धा पैदा कर रखी है, भगवान प्रति तो है नहीं, भगवान तो निरंकार है, भगवान तो निराकार, पर अपने प्रति श्रद्धा पैदा कर रखी है, वो इतनी स्ट्रांग है कि आपकी हर प्रीचिंग आपको सुनने को तैयार नहीं, दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू यू। मैंने पूछा राधा स्वामी कौन है, राधा जी कौन है, राधा जी के स्वामी कृष्ण, उनकी पूजा क्यों नहीं करते हो, राधा स्वामी कहते हो अपने आप, राधा जी के स्वामी कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण की पूजा क्यों नहीं करते? कहते नहीं 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 नहीं, वो नहीं है। राधा जो है ना, राधा सूरत को कहते हैं, सूरत, दैट इज अवर समथिंग समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इट इज। अब सूरत जगाते हैं सवेरे, इसलिए हम राधा स्वामी कहलाते हैं। मतलब दे हैव ए डिफरेंट कंसेप्ट, और आप उनके कंसेप्ट को समझ नहीं सकते। तो हमें प्रचार करना है, हमारे डोर्स ओपन है, ओपन फॉर ऑल एनीबडी। हम ये नहीं कहते तो कार्य बाहर चल, राधा स्वामी बाहर चल, फलाना बाहर चल, नहीं। जो हमारा डोर्स ओपन, हमारे लोग आते हैं, प्रभु जी कुछ भी है, आपके मंदिर में जो शाम में पंजाबी बाज गया था, जो शाम को 7 बजे आरती हो रही थी ना, आहा, मैं भाव विभोर हो गया। मेरे बैंक का कैशियर जो है, एक सरदार जी थे हमारे मैनेजर बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हरिनगर में, उन्होंने मेरे गले में कंठी माला देखी, तो उनसे अच्छा आप और इस कौन को जाते हो? मैंने कहा मैं भी जाता हूं। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, ये भगवदगीता पकड़ो, इंग्लिश की पकड़ो, हिंदी की पकड़ो, है मैं ना वहां पे अपनी वाइफ को लेके ना शाम को 7 बजे आरती में जाता हूं, मेरा घर बजाई बाग के पास है। जो मुझे आरती में आनंद आता है, जो वहां पे मजा आता है मुझे आरती अटेंड करने का, पर पूछो ना जी, मैचलेस है। तो हमने तो नहीं मना किया, सुधार बार बैठ नहीं कहा ना किसी, अब डोर था ऊपर, एनीबडी कैन कम, एनीबडी कैन एंजॉय। हो सकता है कल वो कृष्णा कॉन्शियस हो जाए, हैं बहुत सारे लोग हैं, कृष्णा कॉन्शियस हो जाए, भगवान के प्रति समर्पित हो जाए, पर श्रद्धा अल्टीमेटली भगवान ही फिक्स करते हैं। जैसा भगवान ने स्वयं स्टेटमेंट दिया, इट्स नॉट स्टेटमेंट बाय एनीबडी एल्स, स्टेटमेंट स्वयं भगवान का है, श्रद्धा मैं फिक्स करता हूं। और ये बात उससे क्लैरिफाइड है कि श्रद्धा देवता जब अपने में फिक्स नहीं कर सकते, तो देवता आपकी श्रद्धा भगवान में कैसे फिक्स कराएंगे? दिस पॉइंट इज टू बी अंडरस्टूड। हरे कृष्ण।